सोमवार कार्यक्रम में हम सभी को सादर स्वागत है। आज हम भगवद गीता की 9वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में परम गोपनीय व गुह्य ज्ञान को बतलाते हैं अपने प्रिय भक्त अर्जुन की समक्ष। सब लोग मेरे पीछे मंत्र को दोहराइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ये श्लोक मेरे पीछे उच्चारण करने के प्रयास कीजिए। अश्रद्धान पुरस धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मने। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्यं मानि वर्तन्ते मृत्यु संसार बत्मने। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्यं मानि वर्तन्ते मृत्युं संसारवत्मनि। इसके शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। अश्रद्धान श्रद्धा विहीन पुरुषां पुरुष धर्मस्य धर्म की प्रति अस्य इस परंतप हे शत्रु विजेता अप्राप्य बिना प्राप्त किए मां मुझको निवर्तन्ते लौटते हैं मृत्यु संसार मृत्यु रूपी संसार में बत्मनी पथ में। इसके अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए इस अनुवाद को। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर आपस आते रहते हैं। अभी तात्पर्य ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना व कर पाना कठिन है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग प्राप्त करना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? महापुरुषों से वैदिक प्रमाण को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। इतनी बड़ी विडंबना दुर्भाग्य है। भक्तों की संगति से भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। जथातरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाख प्राणोपहारस्य जतिन्द्रियाणम् तथैव सर्वार्हणमच्युतजया। वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारी देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारी कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो वही यही श्रद्धा है। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? ईश्वर की सेवा दृढ़ता से करना। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। कौन सी हैं? तीसरे कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। श्रद्धा नहीं है लेकिन एक लौकिक उपचार है। चलिए हम मंदिर चलते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, परंतु श्रद्धा की पात्रता नहीं है, तो कुछ समय के बाद फिर अपने भौतिक स्थिति पर लौट जाते हैं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अर्थात कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं और जो थोड़े बहुत भक्ति करते हैं उस भक्ति में जीवन को त्याग कर देते हैं। अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे कि उनकी आर्थिक दशा को सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढेरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। दूसरे लोग आते हैं कुछ अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, कुछ धन की इच्छाओं से आते हैं, कुछ अपने मानसिक चिंताओं को दूर करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए आते हैं, परंतु जो ही अपने उद्देश्य को सफल कर लेते हैं वह अपने चिंताओं को दूर कर लेते हैं तब फिर वो कृष्ण भावनामृत से दूर हो जाते हैं। परंतु कृष्ण भावनामृत में जो दृढ़ श्रद्धा रखते हैं तो वो भक्ति में टिके रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तीसरे कोटि के लोग क्या होते हैं? थोड़े समय के बाद फिर भक्ति से दूर हो जाते हैं। परंतु प्रथम कोटि के लोग कौन हैं? जो लोग कैसे दृढ़ श्रद्धा रखते हैं? हाँ, जो ऐसे भगवत गीता भागवतम और अनेक वैदिक ग्रंथों को पढ़कर अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ लिए हैं, वो कभी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो प्रथम कोटि की भक्त हैं, वह व्यक्ति हैं। और दूसरे कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से तृतीय कोटि की उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्हें न तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। हम में से अनेक ऐसे भक्त हैं जिन्हें कोई शास्त्र के ज्ञान नहीं है, परंतु मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेने से स्वतः उनके अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और किसके आधार पर ये श्रद्धा उत्पन्न होती है? सरलता के द्वारा, क्योंकि सरल भावना है। तो सरलता के द्वारा हमारी भाव को हम श्रद्धा में बदल सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो भक्ति है ये बहुत सरल है, किसके लिए? न जो व्यक्ति सरल है, और वो बहुत कठिन है जो व्यक्ति कुटिल है अर्थात कपटी है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना बहुत आसानी है, क्योंकि सहज और सरल भावना से प्राप्त होते हैं। अपत्ति वो अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनावृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते हैं। प्रथम कोटि के लोग के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्र से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। उनके पास समय के अभाव है, और दूसरा है उतने धैर्य नहीं है ये सारे सिद्धांत को समझने के लिए, पर उनके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं होता है। किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्र से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, किंतु कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है। जो तीसरे कोटि के लोग हैं जिनके पास बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, वो कभी कभी फिर कर्म की ओर आकर्षित होते हैं और ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं, और कभी कभी वो विचलित होते रहते हैं, किंतु यही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है, और श्रीमद् भागवत में इसकी वर्णन है। भागवत की 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, बड़ाई है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय। समय के अभाव है, मंगलाचरण को हम थोड़ा सटली करेंगे, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजनतलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये संसार में जो मनुष्य के रूप में इस शरीर को, भौतिक शरीर को प्राप्त किया है, ये एक अवसर है हमारे सोया हुआ और खोया हुआ संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए। हम सबके अंदर एक चेतना पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं कॉन्शसनेस, और ये चेतना हमेशा ही एक प्रकार रिवोल्यूशन, संघर्ष कर रहा है। किसको प्राप्त करने के लिए? वही कृष्ण के साथ अपने संबंध को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सुखमय है, आनंदमय है, और हमारे अंदर जो चेतना है वही आनंदमय है। परंतु ये जो भौतिक दशा है ये विपरीत है, इसको कहते दुखालयम। इसलिए जीव अपने स्वभाव व धर्म को स्थापन करने के लिए ये संसार में संघर्ष कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं वास्तविक धर्म क्या है, कि वास्तविक धर्म हम भगवान के सनातन अंश, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए हमारी हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, और ये सनातन धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान समय समय पर, युग युग पर अवतरित होते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप अजन्मा होते हुए भी क्यों जन्म लेते हैं, और आपकी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आकर के आप कर्म करते हैं, तो भगवान उनको दो उत्तर देते हैं कि मेरे जो जन्म है और कर्म है ये दिव्य है, और जन्म किस लिए होता है? धर्म को स्थापन करने के लिए। और कर्म क्या है? साधुओं को रक्षा करना और दुष्टों को विनाश करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि चुके। तो यही धर्म है, और भगवान इस अध्याय में इस गुह्य बात को बतलाते हैं, और प्रारंभ में कहते हैं अर्जुन तुम सुनो, ये बहुत गोपनीय बात है, बहुत कॉन्फिडेंटल है, मैं ये सबको इस बात को बतला नहीं सकता हूं, मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आप मेरी भक्त हैं, और आपके पास एक विशेष गुण है। क्या? आप अपने शत्रुओं के प्रति भी ईर्ष्या रहित हैं, अनुसूयवे। अगर इस ज्ञान को कोई व्यक्ति सुन करके भी उसमें श्रद्धा नहीं रखता है, तो भगवान कहते हैं अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना। जो धर्म को मैं आपको बतला रहा हूं, अगर कोई इसको सुनता है परंतु इसमें कोई विश्वास व आस्था स्थापन नहीं करता है, तो क्या होता है? मांग अप्राप्य मुझे प्राप्त न करके मृत्यु संसार वत्मनि निवर्तन्ते। निश्चित रूप से ये जन्म मृत्यु की चक्र में बार बार आना पड़ेगा, निवर्तन्ते। ये संसार को क्यों मृत्यु संसार कहा जाता है आप में से कोई बता सकता है? क्यों? दूसरे शब्द में मृत्यु किसको कहते हैं? नया जन्म लेना। लेकिन हमारे सबकी प्रतिदिन मृत्यु भी होती है, होते है कि नहीं? सत्य है। कैसे मृत्यु होती है? सो जाने पर। मृत्यु की परिभाषा है परिवर्तन। मृत्यु क्या है? परिवर्तन व भूल जाना। तो मृत्यु की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं मृत्यु विपर्जय स्मृति, अर्थात इस जन्म में हम क्या किए हैं मरने के बाद हम सब भूल जाते हैं। भले ही हम पीएचडी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, परंतु मरने के बाद फिर जब हमको दूसरे जन्म मिलता है फिर हमको पहले से एबीसीडी सीखना पड़ता है, है कि नहीं? तो मृत्यु की परिभाषा है विपर्जय स्मृति, भूल जाना। और हम लोग हमेशा ही भूले रहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि एक साल पहले आज के दिन में, आज के डेट में आप क्या कर रहे थे, बतला सकते हैं? 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, हम भूल जाते हैं। वाह, इसको याद करने के लिए कुछ समय भी लगेगा, है ना? इसको कहते मृत्यु। अर्थात ये संसार को प्राप्त होते ही हमारे जो नित्य संबंध हैं, कि हमारे अंदर एक जीवात्मा है और जीवात्मा के साथ एक घनिष्ठ मित्र बैठा हुआ है परमात्मा, इसको भूल जाना। हम सब भूले हुए हैं और इस मृत्यु को भी हम भूल गए हैं कि एक दिन इस भौतिक शरीर का पतन होगी, इसको हम भूल चुके हैं। इसलिए भगवान इस स्मृति को जागृत करने के लिए आते हैं, और जिसके द्वारा इस स्मृति को जागृत करते हैं इसको क्या कहते हैं? धर्म। इसको क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का परिभाषा क्या है? अपने चेतना व स्वभाव, इसको फिर पुनर्जागृत करना। तो वही 5000 साल पहले अनेक लोग थे, और विशेष करके जिसको ये ज्ञान दे रहे हैं वो भी भूल चुके थे, अर्जुन स्वयं ऐसा एक साधारण मनुष्य की भांति वो भी ऐसे अभिनय कर रहे थे। उन्होंने प्रश्न कर दिए, कैसे आप और हमारी जन्म एक साथ हुआ है, आप कैसे सूर्यदेव को इस ज्ञान प्रदान किए थे, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहे, बहुनी में व्यतीतानि, हमारे और तुम्हारी अनेक जन्म बीत चुके हैं। तानि अहम वेदा, मैं उन सबको जानता हूं परंतु तुम नहीं जानते। अर्थात भगवान पूर्ण चेतनामय है और जीव अणुचेतनामय, इसलिए इसके स्वभाव है छोटे होने के कारण भूल जाना। बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है, खाना और घूमना खेलना। तो भगवान जिसके द्वारा पुनः इस चेतना को जागृत करते इसको कहते धर्म, इसको कहते परित्राण। अर्थात जीव को फिर पुनः उस चेतना के साथ युक्त करने से जीव के जो बार बार पतन होता है इससे वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, परित्राण, रक्षा प्राप्त करता है। इसलिए 4th अध्याय में जो धर्म की बात अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए थे उसी धर्म को फिर कह रहे हैं। ये बहुत गोपनीय है, परंतु इस धर्म की गुह्यों को समझ कर, गुह्यता को समझ करके इस प्रति फिर श्रद्धा हटा लेना, समझ करके भी श्रद्धा नहीं रखना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति गरीत है और निश्चित रूप से पतित हो जाता है। इसलिए भगवान की जो मिशनरी एक्टिविटीज है, जिस कारण से यहां अवतार लेते हैं, इनके मुख्य प्रयोजन है कि साधुओं को रक्षा करना, उनकी गौण प्रयोजन है असुरों को विनाश करना। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान प्रह्लाद जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवकी जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, परंतु ये कार्य को करने के लिए कभी कभी ये असुरों को मारना पड़ता है। जैसे मरीज को काटने के लिए डॉक्टर नहीं होता है, उसका फोड़ा को ऑपरेशन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, उसकी स्वस्थ अवस्था व स्वाभाविक अवस्था को ले आना, उनके कष्ट को दूर करना। तो सामान्य लोग इसे समझेंगे, देखो ये डॉक्टर कितने निर्दयी हैं, इस फोड़ा को काट रहा है। तो उसी प्रकार कभी कभी भगवान असुरों को दंड देते हैं, परंतु जिन असुरों को भगवान संहार करते हैं तो भगवान उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो असुर संहार भी क्या है? भगवान की दया है। जैसे मां कभी भी निर्दयी नहीं होती है अपने बच्चों के प्रति, तो मां तो कभी कभी अपने बच्चों को गोद में लेकर के चूमती हैं, उनको भोजन खिलाती हैं, सभी प्रकार की सेवा करती हैं, लेकिन वही मां कभी कभी अपने बच्चों को दंड भी देती है, थप्पड़ मारती है, उसके कान पकड़ करके इससे बनते दंड भी देती है। तो ये देखकर कि एक दृश्य को देखकर कि हमें ऐसे सिद्धांत पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि देखो ये मां कितनी कठोर हृदय वाली है, अपने बच्चों को ऐसे दंड दे रही, परंतु दोनों में, उनको दंड देने में, उनको स्नेह करने से करने में, ये दोनों परिस्थितियों में मां के अंदर क्या है, अपने बच्चों के प्रति स्नेह, तो उसी प्रकार। परंतु यहां एक मुख्य फ्रेजन जो बहुत गुह्य बात है, परंतु ये गुह्य बात गोपन रखना नहीं चाहते, इसको ओपन करना चाहते हैं। वो क्या है, वो कहते हैं ये जो साधुओं को मैं रक्षा करता हूं, ये साधुओं के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में रखते हैं कि भक्तों की संगति से ही इससे श्रद्धा उत्पन्न होती है। परंतु ये साधुओं के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से ये धर्म के गुह्य रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से, आदो श्रद्धा। परंतु संगति पर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, सतं प्रसंगान मम बिर्ज संबितं भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद जोषणंगासु अपवार्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को कहते हैं, मेरी भक्तों की संगति से, सतांग प्रसंगान संग से, जो मेरी विरजवती कथा को श्रवण करके उनकी हृदय और कान को आनंद देने वाले, इस कथा को सुन करके जो भावना उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं श्रद्धा। उसके बाद रति, उसके बाद भक्ति व प्रेम उत्पन्न होती है। कभी कभी बड़े बड़े जोगी, ध्यानी, तपस्वी भक्तों के ऐसी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे धर्म की स्थापना मेरी भक्तों के द्वारा ही होती है, इसलिए मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। और भक्तों की रक्षा करना इसलिए अनिवार्य है कि साधु पुरुष ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए भगवान जो चार आयुध को धारण करते हैं, उसमें से प्रमुख आयुध क्या है, सुदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन का मतलब यह है कि जो अच्छी दर्शन दे, जो हमारे आंख को खोल दे। इस प्रसंग में आज हम कथाएं सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम की एक प्रसंग है। नवमा स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, इस भारत में सूर्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभागम, और उनके पुत्र का नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश महाराज आर्यवर्त के राजा थे, विशाल ऐश्वर्य प्राचुर्य से उनके नगरी समृद्ध भान था। बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण अतिथियों को स्वागत सत्कार करते थे। उनके राज्य में कोई गरीब नहीं था, आज के समाज जैसे नहीं था, महंगाई बढ़ रहा है, लोग कर्ज से पीड़ित हैं, सब प्रकार के त्रस्त हैं। परंतु प्राचीन काल में राजा धार्मिक होने के कारण सभी प्रकार की संपन्नता से परिपन्न था। तो ये अम्बरीश महाराज बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करते थे। गौतम, वशिष्ठ, यज्ञ बालक आदि ऋषियों के द्वारा ये यज्ञ संपन्न करके, ब्राह्मण को दक्षिणा दान करके, ये व्यक्तिगत रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवान की लीला चरित्र से संपन्न वैदिक ग्रंथों को अध्ययन करते थे और श्रवण करते थे। एक बार उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की नित्यधाम वृंदावन में आकर के एक व्रत करने के लिए, एकादशी व्रत को एक साल तक, इसमें 25 एकादशियां आती हैं, इस एकादशी व्रत को पालन करने के लिए उन्होंने मधुबन आए। अभी भी इस मधुबन मथुरा नगरी में उपस्थित हैं। तो पत्नी के साथ उन्होंने 3 दिन अर्थात दशमी और द्वादशी का दिन एक बार ही हविष भोजन करते थे, और एकादशी के दिन पूरी तरह एकादशी मतलब कोई भोजन नहीं करते थे, और ये विधि है जिनके लिए संभव है इसे कर सकते हैं। और ठीक समय पर द्वादशी व्रत को उन्होंने तोड़ते थे, समय पर ही व्रत की पारायण इसको कहते हैं करते थे। ये व्रत एक साल पूरी होने जा रहा था, तो उस समय आशीर्वाद और साप देने में समर्थ ऋषि कौन, दुर्वासा, उनके अतिथि के रूप में पधारे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय में हमेशा ही साधुओं के प्रति, वैष्णव के प्रति, ब्राह्मण के प्रति सत्कार की भावना रहती है, परंतु जो कसाई हैं, पशुओं के हत्यारा हैं, मांस भोजन करने वाले हैं, वो कभी इसी प्रकार धर्म के कार्य में हाथ नहीं बांटते हैं। तो अम्बरीश महाराज इस द्वादशी के अवसर पर दुर्वासा जी को सत्कार किए और उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित किए। दुर्वासा जी कहे, मेरा कुछ कृत्य कर्म है, स्नान ध्यान आदि कृत्य कर्म है, मैं इसको करने के संपन्न करने के बाद आपकी भोजन स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने जमुना तट पर गए स्नान करने के लिए, तब अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की बाट जोहते रहे, कब आएंगे। उसी समय तो कोई कार नहीं था, भेज देते कि जाओ जल्दी उनको बुला के ले आओ। तब बहुत दूर चल गए थे, केसी घाट तक चल गए थे दुर्वासा मुनि। तो वहां स्नान करके भगवान शिव को ध्यान करते करते विलंब हो गए, क्योंकि दुर्वासा शिव जी के अंश अवतार हैं। तो अम्बरीश महाराज बड़े दुविधा में पड़ गए, अभी पारण के समय हो रहा है और एक ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अगर मैं स्वयं पारण कर लू तो बहुत बड़ा पाप होगी। आजकल ऐसे कोई धर्म के विचार नहीं है, और ये एक विष्णु की व्रत है, इसको समय पर यदि पारण न किया जाए ये भी धर्म की हानि होगी। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण की सभा बुलाई और सभी ब्राह्मणों से उन्होंने परामर्श किया, परंतु ब्राह्मण लोग ने कोई निर्णय नहीं कर पाए आपको क्या करना चाहिए। तो स्वयं अम्बरीश महाराज इस परिस्थिति में उन्होंने वैदिक वाङ्मय नीति, जलम अश्नाति न वाष्णोति, जल को पीना भोजन नहीं है और भोजन भी है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा से जल ले लिए पारायण के रूप में। जब दुर्वासा जी लौट करके आए तो अम्बरीश महाराज उनको आमंत्रित किए भोजन के लिए, परंतु दुर्वासा जी अपने ध्यान बल से ये सब कुछ समझ गए कि मुझे भोजन कराए बिना वो पहले से ही भोजन कर लिया, क्योंकि वो इस अर्थ को लिए कि जल पीना भोजन ही है, और कुपित होकर के तुरंत अपने जटाओं से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिए, और उनकी उस बाल से एक भयानक कृत्या नामक एक लड़की उत्पन्न हुई, और वो अपने हाथ में एक तलवार लेकर के अम्बरीश महाराज की ओर बढ़ने लगी। और यह दृश्य को देख करके अम्बरीश महाराज विचलित नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही बता चुके थे कि अम्बरीश ऐसे भक्त थे जो हमेशा ही भगवान विष्णु के सतत चिंतन करते थे। सवेई मन कृष्ण पदारविंदयो, और उनकी वाणी सतत भगवान की सेवा में अर्पित थी, और उनके हाथ हमेशा ही भगवान की सेवा में लगा रहता था, और उनकी पैर हमेशा ही तीर्थ यात्रा की ओर चलता था, और उनकी स्पर्श इंद्रियां भक्तों को आलिंगन करता था, उनके नेत्रों भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करता था, और उनकी नासिका भगवान के चरण में अर्पित तुलसी दल की सुगंधि को को आग्रहण करने के लिए ही लगा रहता था। और उत्तम श्लोक की चरित्र के प्रति उनकी स्वतः आग्रह थी। जब उन्होंने इस प्रकार एक भयानक कृत्या नामक कन्या को देखे, उन्होंने भी उसी समय भगवान को स्मरण कर रहे थे, परंतु उनके अंदर भय नहीं थी। जो भगवान के ऊपर पूरी तरह से पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, उनके अंदर कभी भी भय नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्तों का पहला गुण है अभयम सत्व संसिद्धिर, क्योंकि उनका हृदय भगवत भक्ति में लगा रहता है। अभयं सत्व संसिद्धि ज्ञान जोग व्यवस्थिति। और भगवान स्वयं कहते हैं, दुराचारियों में भी सर्वश्रेष्ठ दुराचारी क्यों ना हो, यदि मेरी भक्ति में अड़ी रहता है तो उनको साधु पुरुष ही मानना चाहिए। अपिचेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। और भगवान कहते कि ऐसे साधुओं का कभी विनाश नहीं होता है, हे अर्जुन तुम ही घोषित करो कि मेरी भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। और भक्तों की पूर्ण आस्था है भगवान के वचन के प्रति। तो अम्बरीश पूरी मनोजोग के साथ भगवान विष्णु के स्मरण कर रहे थे। और जब से अम्बरीश महाराज भक्ति करना शुरू किए, भगवान उसी समय ही अम्बरीश को सुरक्षित करने के लिए उनके विशेष आयुध सुदर्शन को उनकी सेवा में लगाए थे। इस विषम परिस्थिति में भगवान स्वयं उस कृत्या नामक कन्या को इस सुदर्शन चक्र से जला दिए। जब इस दृश्य को दर्शन किए दुर्वासा जी, तो वो भी भयभीत हो गए। इतने बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु क्रोध पर नियंत्रण न करने के कारण वो भी विचलित हो गए। और ये सुदर्शन चक्र तुरंत कृत्या को समाप्त करने के बाद इस दुर्वासा की और बढ़ने लगा। दुर्वासा जी अपने प्राण को बचाने के लिए भागने लगे, परंतु सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और इतनी भयानक दुस्सह्य इस ज्वाला थी जिसको सहन करना बहुत कठिन था दुर्वासा के लिए। तो दुर्वासा जी इस कठिनाई से बचने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, मेरे भी दो परार्थ की बात इस ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर उन्हें शिव जी की शरण में गए। कैलाशपति शिव जी ने कहे, बेटा तुम बहुत बड़ा अपराध कर चुके हो, इसलिए तुम जाओ वैकुंठपति की शरण ग्रहण करो। तो दुर्वासा जी एक मुहूर्त भी विलंब नहीं किए, उन्होंने तुरंत वैकुंठ की प्रथम दरवाजा, वैकुंठ में 7 दरवाजा हैं, तो जहां नंदा और प्रमोद दोनों द्वारपाल रहते हैं, तो वहां जब पहुंच गए और त्राही त्राही पुकारने लगे, भगवान की पार्षद भगवान विष्णु की सूचना दिए, कोई एक ब्राह्मण आपकी शरण चाहता है। भगवान ने कहे, ये सृष्टि की रचयिता मैं ही हूं और इस सृष्टि के पालन भी मैं ही करता हूं, और समय पर शिव जी के द्वारा इस सृष्टि का संहार मैं ही करता हूं, परंतु आज पहला एक दिन है जो मैं अपने वचन को तोड़ता हूं। भगवान ने क्या कहे कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाता है और कहता है, प्रभु आज मैं आपकी शरण में हूं, मैं उसी समय उसी मुहूर्त ही मैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता हूं, और भगवान श्री रामचंद्र ने ये भी फर्ण किए थे सभी बानर सेनाओं के सामने। सकृतेव प्रपन्नः तब अस्मीति याचते अभयम् तस्मी ददामि एतत् मम व्रत। ये मेरी व्रत है, ये मेरी फाण है, परंतु दुर्वासा जी से उन्होंने हाथ जोड़कर ही कहे, हे ब्राह्मण, तुम जैसे कर्म किए हो आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देकर के यही कहता हूं कि आज से मैं अपने भक्तों के अधीन हो गया हूं। अहं भक्त पराधीन न ही स्वतंत्र इव द्विजः साधव ग्रस्त हृदयम् भक्तैर् भक्त जन प्रिय। देखिए दुर्वासा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं हमेशा ही अपने भक्त के अधीन रहता हूं। भक्त जैसे चाहता है मुझे ऐसा ही करा लेता है क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति के अधीन हो जाता हूं। माता जसोदा की भक्ति के अधीन होकर के मैं उनकी पीड़ा उठाता था। नंद बाबा की भक्ति में अधीन होकर के मैं उनकी चरण पादों का कुमस्तक पर वहन करके जाता था और वही भक्ति के बस होकर के भगवान अर्जुन और पार्थ की सारथी बने। आज वही पार्थ सारथी हमारे मंदिर में विराजमान है। तो भगवान और कहे, देखो मेरी भक्त जिन्होंने सालोक्य षष्ठी सामिप्य आदि पांच प्रकार की मुक्ति को त्याग करके मुझे ही अपना जीवन के लक्ष्य बनाए हैं, मैं उनकी भक्ति में इसी प्रकार वशीभूत हो जाता हूं जैसे कि सती स्त्री अपनी सेवा के द्वारा अपने पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं उनकी भक्ति में वशीभूत हो जाता हूं। तो उन्होंने सात मुख्य श्लोक बताए। सो कहते हैं ये भगवत भक्ति के सात कमल की पंखुड़ियां जैसे हैं। इस बातें को सुनकर के जो कली रूपी भक्ति है ये कमल के पंखुड़े की तरह खिल जाता है। और भगवान कहें, यदि इस संकट से तुमको बचना है तुम जाओ और अम्बरीश की शरण ग्रहण करो। तो दुर्वासा जी तुरंत, जिनके पास इतनी शक्ति था उन्होंने वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए, परंतु वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, उनको लौटना पड़ा। अप्राप्यंग मा निवर्तन्ते, क्योंकि साधु की महत्व को नहीं समझे थे कि भगवान के धर्म है साधु की रक्षा करना, और साधु कैसे भगवान को अपने अधीन कर लेता है ये जोगी लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्यामं अभिजानाति जावं जच्चास्मि तत्त्वतः ततो मं दततो ज्ञान्त्वा विसते तदनन्तरम्। इसलिए दुर्वासा जी लौट करके आए और अम्बरीश महाराज की शरण ग्रहण करें। और अम्बरीश महाराज उनकी हृदय देखिए, जब से दुर्वासा जी उस स्थान छोड़कर के चल गए वो इतने दुखी हो गए कि दुर्वासा जी को बचा नहीं पाए, दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा पाए। इसलिए उन्होंने एक साल तक प्रतीक्षा की, अर्थात दुर्वासा जी को एक साल लग गए वैकुंठ लोक से लौट करके आने के लिए। आप सोचिए दुर्वासा जी भी एक साल तक भोजन नहीं किए थे और अम्बरीश महाराज सिर्फ एक साल तक पय व्रत किए, अर्थात जल पान कर करके जीवन धारण किए। और जब दुर्वासा जी लौट करके आ गए तो उस समय अम्बरीश महाराज कहे, आइए प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। परंतु दुर्वासा जी कहे, दोनों हाथ उठा करके कहे, जब भगवान ने भी दो हाथ उठा करके कहे, मैं आपकी शरण नहीं दे सकता, आप जाओ अम्बरीश की शरण में। तो दुर्वासा भी सीख गए कि वास्तविक शरण लेना है, हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर उठा लेना। और कहे अहो अनंत दासानं महतम दृष्टम अद्य मे कृतागसिमपि जदराजन् मंगलानि समीहसे। और कहें आज भगवान अनंत की दास की महिमा की पूरी पराकाष्ठा मुझे आज अनुभव हुआ, उनकी प्रति मैं कितना कठोरता के व्यवहार किया, उनकी मारने के लिए मैं प्रयास किया, परंतु देखिए ये अनंत की दास की हृदय कितनी स्वच्छ, कितनी दया से भरी हुई है। इसलिए भगवान भक्तों की वत्सल हैं, भगवान भक्त वत्सल। इन्हीं भक्तों की हृदय की जो दैन्य करुणा से भगवान स्वयं ही अधीन हो जाते हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए और कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयत्सति तदहं भक्ति उपवृतम श्नामी प्रेतात्मना। इसी प्रकार प्रेतात्मना जो भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति कौन सी है, भाव है समर्पण, दैन्यता। हम घर में बहुत प्रकार की सब्जी बना सकते हैं, परंतु नमक डालना यदि भूल जाए तो सब्जी स्वाद नहीं लगता है। तो हम दान ध्यान तपस्या वेद अध्ययन व्रत आदि सभी संपन्न कर सकते हैं, परंतु भगवान के प्रति यदि समर्पण भाव नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं नाहं वेद न तपसा न दानेन न चिज्जया भक्त्याम एवं केवलम ग्राह्यम। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, वेद अध्ययन यज्ञ दान तपस्या से नहीं। सत्यम एवं विधो दृष्टम दृष्टवान से मांग जथा। तो इसी प्रकार दुर्भाषा जी अम्बरीश की स्तुति कर रहे थे। अम्बरीश जी तुरंत दुर्भाषा जी को प्रणाम की और दुर्गाषा जी दोनों हाथ ऊपर उठा करके अम्बरीश के चरण में गिर पड़े। ये भाव रखना चाहिए, जाने अनजाने में यदि कोई त्रुटियां दोष अपराध हो जाए तुरंत उस भक्तों से ही इसी प्रकार क्षमा याचना करना चाहिए, नहीं तो सुदर्शन चक्र कभी हमको छोड़ नहीं सकता है। जो हमारे बुरी दर्शन हो गया है, ये संसार को भोग करते करते जो हमारी दृष्टि बुरी हो चुकी है, इसको कहते हैं दूरदर्शन। जो हम टीवी के पास बैठे रहते ये हमको दूर कर देता है, ये सुदर्शन नहीं है, ये हमको भगवान से दूर करता है, इसको दूरदर्शन कहते हैं। और भगवान का दर्शन दूर में रह जाता है, इसलिए सुदर्शन कभी कभी जरूरत है हमको अच्छी दर्शन देने के लिए। ये समय पर हमको सबक भी सिखा देता है। ये सुदर्शन चक्र जब काल के रूप में आता है हम कहते भगवान बचाओ। यदि हमारे पास ऐसे कठिनाई विपत्तियां नहीं आती तो हमारा आंख नहीं खुलता, हमको दर्शन नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते दुख दोषानुदर्शन। तो फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी को भोजन करवाए और दुर्वासा जी कहे आप भी भोजन कीजिए। फिर अम्बरीश महाराज भी भोजन किए और एक दूसरे से गले लगाए और दुर्वासा जी कहे आज मुझे एक अच्छी सबक मिल गया, आज मैं अच्छे सबक सीख लिया हूं, कभी मैं इसे वैष्णव प्रति निराधार नहीं करूंगा। दूसरी बार जब पांडव के आतिथ्य को स्वीकार किए थे उसी समय वही स्मरण आ गया, अरे एक भक्त के प्रति अपराध किया था और मुझे एक साल तक भगना पड़ा। स्नान करते करते जब उनकी 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी की पेट भर गया, गले तक हो गया, उन्होंने कहा अरे वनवास के समय पांडव लोग की आतिथ्य स्वीकार करने के लिए मुझे दुर्योधन ने भेज दिया, अगर उनके पास कुछ भोजन कर लेकिन ना हो, परंतु ये पांडव लोग भगवान जनार्दन के द्वारा सुरक्षित हैं, हो ना हो फिर ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे चलेगा। अभी वो भागने लगे हैं शिष्यों के साथ, और एक दिशा में नहीं अलग अलग दिशा पर भाग गए। तो देखिए कितनी भयंकर परिस्थिति होता है। इसलिए भगवान कभी कभी आसुरी की भावना को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि असुरों का भी संहार बहुत अनिवार्य है। असुर लोग को समझेंगे नहीं, कहते ना लात की देवता कभी बात में नहीं समझता है। तो कभी कभी भगवान असुरों को भी कुछ सबक सिखाने के लिए ऐसा ही करते हैं। जैसे कंस था ही देवकी भाई, परंतु अपनी प्राण की रक्षा के लिए अपने बहन की बाल को पकड़ लिया। भगवान ने कहा ठीक है मामा जी, तुमको सिखाऊंगा सबक, रुक जाओ। देवकी के छह छह पुत्र को हवाला कर दिए, क्योंकि जब तक इस असुरों का पाप की घड़ा नहीं भरता है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। छह पुत्रों को दे दी, अपने भाइयों को दे करके कंस का पाप की घड़ा को भर दिया। भगवान श्री रामचंद्र भी अपने पत्नी सीता को भी देकर के रावण की घड़ा को भर दिए। जो कुछ पुण्य बचा था, हालांकि रावण ब्राह्मण था, विश्रवारुषि की पुत्र था, हिरण्यकशिपु किसकी पुत्र था, कश्यप मुनि ब्राह्मण के पुत्र है, उस कुल में जन्म लेने पर भी असुरी की वृत्ति है। तो समाज में इसी प्रकार ब्राह्मण कहलाने वाले बहुत दुराचारी होते हैं, यदि यथारूप धर्म के पथ को अनुसरण नहीं करते। तो हिरण्यकशिपु, दंतवक्र, शिशुपाल आदि जितने सब असुर थे, भगवान उनको तुरंत संहार नहीं किए, धर्म के मार्गों को सिखलाने के लिए यही प्रकृष्ट उपाय। तो भगवान इस श्लोक में यही शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम यथारूप इस धर्म के मार्गों को स्वीकार नहीं करते हैं, साधुओं को सम्मान नहीं करते हैं, असत आचरण से नहीं बचते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हम इस मृत्यु संसार में लौट करके आना पड़ेगा। इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के धर्म को स्थापन करने के लिए, असुर के संहार और भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन्होंने वही दोनों हाथ को उठा करके हम सबको कहें कलयुगर युग धर्म नाम संकीर्तन, और यही कीर्तन करवाने के लिए स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ नगर नगर, गांव गांव और शहर शहर में भ्रमण किए और सबको वही सिखाए। इस नाम को उच्चारण करने मात्र से हमारे अंदर जो शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध आदि सब असुर बसे हुए हैं, इस नाम को उच्चारण करने से सब मर जाते हैं, उनका संहार हो जाता है। और जब इस प्रकार सब असुर के संहार हो जाता है तो हमारे अंदर पवित्र भावना उत्पन्न होता है साधुओं के प्रति और भगवान के प्रति, तब फिर इस भक्ति में हम दृढ़ रह सकते हैं और अपने श्रद्धा को दृढ़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर, कुछ किसी के कोई प्रश्न है? यस माता जी, वायरलेस माइक्रोफोन है। एक साल, ये तो एक साल नहीं, ये तो बहुत समय के बाद ही हुआ था, परंतु दुर्योधन ने यही दुर्वासा जी को संतुष्ट करके यही कहा था कि आप पांडव के पास जाइए, क्योंकि पांडव हमारे भाई हैं, तो उनका भी आतिथ्य स्वीकार कीजिए। परंतु दुर्वासा जी को यह पता नहीं था कि पांडव लोग अभी वनवास में कितने संकट में हैं। दुर्योधन ने यही कपटता करके कहा था कि उनके साथ बहुत ब्राह्मण हैं, परंतु ये ब्राह्मण छोड़ के चल गए थे, केवल सिर्फ द्रौपदी को ये आशीर्वाद दिए थे कि आपकी भोजन के पहले ब्राह्मण लोग ने एक पात्र दिए थे जिसको क्या कहते हैं, अक्षय पात्र। भोजन के पहले आप जितने चाहे उतने ब्राह्मणों को अतिथियों को भोजन करा सकते हैं। तो दुर्वासा जी सिर्फ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आए थे पांडव के पास, परंतु पांडव को कठिनाई में डालने के लिए नहीं आए थे। और कोई किसी के प्रश्न है? 60,000, ओके ठीक है। तो नंबर से क्या आपको क्या लेना है? आपको इनवाइट करना है क्या उनको? चलिए आप 10,000 भी कर सकते हैं इनवाइट। और कोई किसी के प्रश्न है? तथ्य पर हमको सिद्धांत समझने के लिए प्रश्न करना चाहिए, संख्या के निरूपण के लिए नहीं। और कोई है प्रश्न किसी की? कौन सा श्लोक? तीसरी श्लोक। हाँ, पहला होता है कि सप्त श्रद्धा, जिसको कहते कोमल श्रद्धा, जहार कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे सही जन हुई बे उत्तम। मतलब जब हमको पहले पहले लगता है हाँ अच्छा है, भगवान के प्रणाम करना, भगवान के नाम उच्चारण करना, प्रसाद पाना, तो कोमल श्रद्धा है। परंतु उस समय यदि हमको कोई गलत प्रीचिंग करता है, अरे कुछ नहीं है, इस्कन वाला सिर्फ धान लूटने के लिए सब एक पाखंड करते हैं, देखो ना कितने बड़े बड़े लाइफ मेंबर बनाते हैं, है ना, वृद्धि 25,000, अरे भक्ति क्या 25,000 में होता है? तो बहुत प्रकार हम लोग सुनते हैं तो हम सोचते हैं हाँ ये कोई ये सब चीटिंग करने के लिए। तो बाह्य आडंबर को देख करके हमारी श्रद्धा को दूर कर देना भगवान के प्रति, ये क्या है कुमार। यदि हम इस इस्कन के लिटरेचर को, भगवद गीता को पढ़ें और उस समझें कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हम क्यों भक्ति करना चाहिए, क्यों भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मन मना भव मत भक्त मज्जा जी मांग नमस्कुर। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सततं कीर्तयन्तुं मां जतन्तस्य दृढ़ व्रता, जो मेरे सतत कीर्तन करता है दृढ़ व्रता के साथ, वो मुझे नित्य उपासना करता है। तो शास्त्र के वाक्यों के साथ अपने मनोभाव को दृढ़ करना ही दृढ़ श्रद्धा है। परंतु ऊपर ऊपर जो श्रद्धा रखते हैं तो बाहर लोगों के प्रवचन से हमारे मन फिर जाएगा, इसलिए कोमल श्रद्धा वाले लोग भक्ति पद को त्याग कर देते हैं। इसलिए सिद्धांत के द्वारा भगवान को समझना चाहिए, इसलिए शास्त्रिक मार्ग और श्रोत्रिय मार्ग, शास्त्र को पढ़ना नहीं तो शास्त्र को किससे सुनना, ये दो मार्ग से हम भगवान के साथ अपने दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। भजन ते मा दृढ़ व्रता, समझ में आया? हरे कृष्ण। अगर कोई किसी की व्यक्तिगत प्रश्न होगा तो हाँ भी क्लास के पश्चात आप पूछ सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।